अब आगे के ग्रंथ में ग्रंथकार दो काम करने वाले हैं। एक तो धातु में व्यापार वाचकत्व है, इस बात को व्यवस्थापित करेंगे, इस बात को सुनिश्चित करेंगे। और दूसरा प्रभाकर आदि जो आचार्य हैं जिन्होंने लडाद्यंत का अर्थ भावना नहीं माना है, माने धातु का अर्थ व्यापार नहीं माना है, ऐसे लोगों को भी जो है ना, ऐसे लोगों की भी खबर लेने वाले हैं आगे के ग्रंथ में। पांचवी कारिका जो है इसी प्रसंग में आती है। पांचवी कारिका है व्यापारो भावना सैव उत्पादना सैव च क्रिया क्रिय अकर्मकता पत्तेर नहीं यत्न अर्थ इष्यते। कहा कि प्रभाकर आदि जो है भावना अर्थ नहीं मानते हैं धातु का, तो भावना का अर्थ होता है व्यापार, माने व्यापार अर्थ नहीं मानते हैं। इस बात को बताने के लिए यहाँ इन्होंने कारिका में सारे पर्यायवाची शब्दों को गिना दिया है। कहा कि व्यापार भावना उत्पादना क्रिया ये चार शब्द जो हैं ये एक ही अर्थ में प्रयुक्त होते हैं। कभी व्यापार कहा जाता है, कभी भावना कही जाती है, कभी उत्पादना कही जाती है और कभी क्रिया कही जाती है। फिर तो इससे तो कोई समाधान अभी नहीं निकला। फिर आगे कहते हैं क्रिया अकर्मकता पत्ते है नहीं यत्न अर्थ इष्यते। असल में क्या है कि ये प्रभाकर आदि आचार्य जो हैं मीमांसक जो हैं इन्होंने क्या किया है, धातु का अर्थ केवल फल माना है, व्यापार अर्थ जो है नहीं माना है। व्यापार अर्थ ये मानते हैं तिंग का, आख्यात का अर्थ मानते हैं। तो उस पर कटाक्ष करते हुए इस कारिका में बताया गया है कि जैसे क्री धातु है तो क्री धातु का मीमांसक के मत में क्या होगा, केवल यत्न अर्थ होगा। यत्न जो है फल के स्थान पर है। तो करोति, करोति का मतलब क्या होता है, यतते माने यत्न करता है। तो यहाँ पर क्री धातु का अर्थ जो यत्न फल है, तो यत्न जो फल है केवल अगर हम फल अर्थ मानेंगे व्यापार अर्थ नहीं मानेंगे तो क्या होगा, क्री धातु जो सकर्मक धातु मानी जाती है उसमें अकर्मकता आपत्ति है, उसमें अकर्मकता की आपत्ति होने लगेगी, वह अकर्मक धातु बनने लगेगी। इसीलिए नहीं यत्न अर्थ इष्यते माने केवल जो है फल वाला जो यत्न अर्थ है केवल उतना ही न इष्यते माने वांछित नहीं है, बल्कि व्यापार भी जो है अर्थ वहाँ पर मानना चाहिए। तो इस तरह से प्रभाकर आदि को इन्होंने चोट की है कि अगर प्रभाकर आदि के मत के अनुसार केवल धातु का फल अर्थ ही माना जाए, व्यापार अर्थ न माना जाए, तो जगत प्रसिद्ध जो क्री धातु सकर्मक धातु है वह सकर्मक धातु भी अकर्मक होने लगेगी, क्योंकि क्री धातु का केवल फल ही अर्थ होगा, केवल यत्न ही अर्थ होगा, व्यापार अर्थ नहीं होगा, और ऐसा न होने से उसमें अकर्मकता की आपत्ति आएगी। ये सामान्य अर्थ जो है कारिका का मैंने बताया, और विस्तृत व्याख्या जो है आगे ग्रंथकार कौंडभट्ट स्वयं भूषण सार में कर रहे हैं। आगे बताते हैं कि पचति यह पद है, इस पचति पद का विवरण, विवरण माने अर्थ बताना, तो अर्थ का विवरण, तो पचति का जो अर्थ विवरण अगर होता है तो क्या होता है, तो या तो कहते हैं पाकम उत्पादयति, या कहते हैं पाकानुकूला भावना, या कहते हैं पाकानु तादृशी उत्पादना, तादृशी माने पाकानुकूला उत्पादना इति विवरणात्, इस तरह का अर्थ का विवरण दिया जाता है। माने पचति का मतलब होता है पाकम उत्पादयति माने पाक को उत्पन्न करता है, अथवा पाकानुकूला भावना माने पाक के अनुकूल, अनुकूल माने जनक, माने पाक को उत्पन्न करने वाली भावना, अथवा पाकानुकूला उत्पादना माने पाक की जनक जो है ऐसा ऐसी उत्पादना, इस तरह से पचति का अर्थ विवरण होता है। और विवरण और विव्रियमाण ये दोनों जो हैं ये समान होते हैं माने एक माने जाते हैं, अभिन्न माने जाते हैं। तो यहाँ विवरण क्या है, अर्थ विवरण पाकम उत्पादयति पाकानुकूला भावना और पाकानुकूला उत्पादना, ये विवरण है। विव्रियमाण कौन है, विव्रियमाण कहते हैं जिसका विवरण किया जाए। तो यहाँ पर किसका विवरण किया गया है, पचति का विवरण किया गया है, पचति पद का, तो पचति पद हो गया विव्रियमाण, ठीक है। तो कहा कि इस तरह से विवरण मिलता है, इसलिए विव्रियमाण जो है पचति उसमें तदवाचकता इति भाव, उसमें इन सब अर्थों की वाचकता जो है माननी चाहिए। इन्होंने प्रमाण दिया कि व्यापार अर्थ जो है क्यों मानना चाहिए, क्योंकि पचति का अर्थ विवरण जो है, जो तीन यहाँ पर दिखाया गया है, उन सबों में व्यापार अर्थ जो है होता ही होता है। तो जब विवरण में व्यापार अर्थ मिलता है तो विव्रियमान का जो है वह व्यापार अर्थ जरूर मानना चाहिए, यही यहाँ पर तात्पर्य है। तो पंक्ति को देखें तो पंक्ति में यही कहा गया कि पचति का विवरण तीन प्रकार से दिया जाता है, या तो पाकम उत्पादयति, या पाकानुकूला भावना, या पाकानुकूला उत्पादना, इस तरह से अर्थ का विवरण पचति का होता है। इसलिए पचति पद का अर्थ भी जो है व्यापार जरूर मानना चाहिए, क्योंकि उत्पादना भावना ये सब जो है व्यापार का ही पर्यायवाची शब्द है। आगे कहते हैं कि व्यापार पदंच भूतकारादी नाम अयतनानाम अपि भूतकारत्वादि रूपेण वाच्यताम घनयितुम उत्तम। यहाँ का रहस्य ये है कि यत्न जो है वह भी क्या है, वह भी तो व्यापार रूप ही है। यत्न प्रयत्न जो होता है, ये प्रयत्न कर रहा है माने व्यापार कर रहा है, क्रिया कर रहा है। तो मतलब ये जो फल व्यापार ही हो धातु जो कारिका में कहा गया, उसमें व्यापार को हटा करके यत्न को भी जोड़ा जा सकता है कि फल यत्न यो हो धातु, फल व्यापार यो धातु के बदले कहा जा सकता है। तो यत्न शब्द का प्रयोग नहीं करके व्यापार अर्थ का ही प्रयोग क्यों किया गया फल व्यापारियों में, ये प्रश्न है। इसका उत्तर दे रहे हैं कि ऐसा है कि ये सही है कि यत्न माने व्यापार भी होता है, व्यापार को यत्न भी कहते हैं, लेकिन यत्न में कुछ विशेष चीज भी है। क्या विशेष चीज है कि यत्न जो है चेतन में रहने वाला धर्म है। कोई चेतन प्राणी जो है जो जीवित है वही यत्न कर सकता है, उसी में यत्न नाम का व्यापार रह सकता है। लेकिन जो अचेतन है, निर्जीव है, उसमें जो है ना ये यत्न शब्द से जो व्यापार अर्थ निकलता है वह यत्न नहीं रहेगा, क्योंकि ये न्याय दर्शन में क्लियर कट कहा गया है कि यत्न जो है वह चेतन का, चेतन प्राणी के द्वारा किया जाने वाला कार्य है। तो इस तरह से अगर हम फल व्यापारियों के बदले फल यत्नयोह कहेंगे तो क्या होगा कि फूतकार आदि जो क्रियाएं हैं, फूतकार समझते हैं ना, फूंकना, खाना पकाने समय में फूंकते हैं चूल्हे को, फिर जो है उसमें दरबी चलाते हैं माने करछुल घुमाते हैं और चीजें कर पानी डालते हैं, फिर उसका परीक्षण करते हैं, बार बार उसको जो है हिलाते हैं, उसको जांचते हैं कि ये पका कि नहीं पका, माने कई तरह की क्रियाएं उसमें की जाती हैं। तो वो सब जो क्रियाएं हैं वो सचेतन में, चेतन में भी रहने वाला है क्रिया और अचेतन में भी रहने वाली क्रिया है। उस सब सारी क्रियाओं को यत्न शब्द के द्वारा नहीं बताया जा सकता और किंतु व्यापार पद के द्वारा बताया जा सकता है, क्योंकि व्यापार ऐसा पदार्थ है जो कि चेतन में भी रह सकता है और अचेतन में भी रह सकता है। इसलिए जानबूझ करके फल व्यापारियों में व्यापार पद का ग्रहण किया गया, यत्न का ग्रहण नहीं किया गया। अगर यत्न का ग्रहण करते तो केवल चेतन निष्ठ जो व्यापार क्रिया है उसी का बोध होता, अचेतन निष्ठ क्रिया का बोध नहीं होता। जबकि दोनों का बोध कराना है, दोनों तरह का जो व्यापार है वह धातु का अर्थ होता है, इसलिए व्यापार पद को ही कारिका में डाला गया। अब पंक्ति को देखिए, समझ में आ जाएगा कि व्यापार पदंच माने फल व्यापारियों में जो व्यापार पद का ग्रहण किया गया वो किस लिए, तो फूतकार आदि नाम अयतना नाम अपि, फूतकार आदि जो क्रियाएं हैं जो अयत्न हैं, यत्न की श्रेणी में नहीं आते हैं, क्योंकि यत्न जो है वह तो केवल चेतन में रहने वाला प्राणी है, चेतन में रहने वाला गुण है, और फूतकार आदि जो है वह अयत्न है माने चेतन में रहने वाला वाली क्रिया नहीं है। उन फूतकारादियों का भी फूतकारत्वादि रूप से वाच्यता हो माने फूतकार का बोध जो है फूतकारत्वेन रूपेण हो, व्यापारत्वेन रूपेण हो, व्यापार के रूप में फूतकार आदि का भी बोध हो, इति ध्वनयितुम, ऐसा ध्वनित करने के लिए ही व्यापार पदम उक्तम, कारिका में व्यापार पद को उक्त किया गया। आगे कहते हैं अतएव पचत इत्यत्र, ताकि इसीलिए व्यापार पद का ग्रहण किया, इसीलिए पचत इत्यत्र पचत पद से अधः संतापनत्व, फूतकारत्व, चुल्ली उपरिधारणत्व, यत्नत्व आदिर्बोध सर्व सिद्ध है। इसीलिए व्यापार कहा तो यत्न और अयत्न दोनों टाइप की जो क्रिया है उसका बोध होता है। जैसे पचत कहने से अधः संतापनत्व, अधः संतापन माने नीचे से संतापित करना, गर्म करना, फूतकारत तो माने फूंकना, चुल्ली ऊपर धारण तो माने चूल्हे के ऊपर में रखना, यत्न, तो इस तरह से जो भी जितनी भी क्रियाएं हैं सारी क्रियाओं का बोध जो है पचति कहने से पच धातु से होता है। यत्न रूप क्रिया हो या अयत्न रूप क्रिया हो, चेतन में रहने वाली क्रिया हो या अचेतन में रहने वाली क्रिया हो। तो ये उत्तर इन्होंने दिया कि हमने फल व्यापार यो हो क्यों कहा, फल यत्न यो हो क्यों नहीं कहा। आगे कहते हैं न च एवं एषाम सकृतावच्छेदकत्वे गौरवापत्या, कहा कि अब जब आपने धातु का अर्थ व्यापार अगर मानते हैं तो व्यापार तो कई हैं, जैसे आपने अभी अभी गिनाया अधः संतापन है, फूतकार है, चुल्ली उपरिधारण है, यत्न है, और भी बहुत सारे टाइप की का व्यापार है, चेतन में रहने वाला, अचेतन में रहने वाला, तो ये सब क्या होंगे, शक्य होंगे। फिर से मैं याद दिला दूं आपको, जब जब मैंने बताया हुआ है कि पद पद से शक्ति के द्वारा जिस अर्थ का बोध होता है उसको हम शक्य कहेंगे, माने शक्ति से होने वाला जिसका बोध है उसको हम शक्य कहेंगे, और शक्य में कौन सा धर्म रहेगा, शक्यता धर्म रहेगा, और उस शक्यता का जो अवच्छेदक होगा, अवच्छेदक मतलब एक शक्य को दूसरे शक्य से अलग करने वाला, एक अर्थ को दूसरे अर्थ से जो अलग करने वाला धर्म है उसको कहते हैं शक्यतावच्छेदक। तो कहा कि यदि हम व्यापार अर्थ मानते हैं धातु का तो अनेक शक्य होंगे, उन अनेकों शक्यों में अनेक शक्यताएं रहेंगी, और अनेक शक्यताओं का जो है ना अलग अलग अवच्छेदक होगा। जैसे पहले जो था ना अधः संतापन, ये शक्य है, कूतकार शक्य है, चुल्ली उपरिधारण शक्य है, यत्न शक्य है। अब इसमें सब में शक्य है तो शक्यता तो रहेगी ही, क्योंकि ब्राह्मण में ब्राह्मणत्व तो रहता है, मनुष्य में मनुष्यत्व तो रहता है, पशु में पशुत्व तो रहता है, जो रहता है उसमें उसका धर्म तो रहेगा ही, तो शक्यता रहेगी। अब उसका अवच्छेदक धर्म क्या होगा, तो अधः संतापन में त्व लगा देंगे ना, शक्यता रहती है अधः संतापन में, उसमें त्व लगा दीजिए तो वह शक्यता अवच्छेदक हो जाता है। तो अधः संतापनत्व ये शक्यतावच्छेदक होगा, फूतकारत्व शक्यतावच्छेदक होगा, चुल्ली उपरिधारणत्व शक्यतावच्छेदक होगा, यत्नत्व शक्यतावच्छेदक होगा। स्वाभाविक है जब अनेक शक्य होंगे तो अनेक शक्यतावच्छेदक भी होंगे, और अनेक शक्यतावच्छेदक होने से गौरव आपत्तिया, गौरव की आपत्ति होगी, माने वह भारी भरकम हो जाएगा, वो एक बोझा हो जाएगा जिसको ढोना पड़ेगा। इसीलिए गौरव न हो, इसीलिए क्या करना चाहिए, तो कृतित्वम एव तदवच्छेदकम वाच्यम, ताकि इसीलिए केवल एक कृतित्व को शक्यतावच्छेदक मानना चाहिए, अर्थात धातु का अर्थ जो है कृति मानना चाहिए, और माने शक्य अर्थ मतलब शक्य, तो धातु का शक्य जो है क्या मानना चाहिए, कृति मानना चाहिए, और शक्यतावच्छेदक अगर हम कृति शक्य मानेंगे तो शक्यतावच्छेदक क्या होगा, उसमें त्व लगा दीजिए, कृतित्व जो है वह शक्यतावच्छेदक हो जाएगा। तो अगर हम धातु का अर्थ कृति मानते हैं तो शक्यतावच्छेदक क्या होगा, कृतित्व होगा, वह एक ही होगा, कृतित्वम शक्यतावच्छेदकम, तो एक ही मानना पड़ेगा, ये बोझा नहीं बनेगा। और अगर हम व्यापार को शक्य मानते हैं तो शक्यतावच्छेदक अनेक हो जाता है, फिर गौरव होने लगेगा, बोझा होने लगेगा, तो इसलिए बोझ न बने, इसलिए कृतित्वम एव तदवच्छेदकम वाचम, इसीलिए धातु का जो है शक्यतावच्छेदक किसको मानना चाहिए, कृतित्व को मानना चाहिए। इति नौ वाच्यम, नौ जो शुरू में है ना उसको वाच्यम के पहले लगा लीजिए, कृतित्वम एव तदवच्छेदकम माने शक्यतावच्छेदकम नौ वाच्यम, नहीं कहना चाहिए, नहीं मानना चाहिए। यहाँ एक बात छूट गई है, ये जो कृतित्व है इसमें इसका अर्थ मैंने नहीं बताया अभी, कृति कहते हैं यत्न को, कृति मतलब यत्न, अकृतित्व मतलब यत्नत्व। तो कहा कि धातु का अर्थ जो है वह कृति ही अगर मान लेते हैं तो शक्यतावच्छेदक कृतित्व होगा, तो एक ही सकतावच्छेदक मानना होगा, तो लाघव होगा, बोझा नहीं होगा। तो ये जो है ना प्रतिवादी प्रतिपक्षी जो है अपना तर्क दे रहा है कि हमारी बात अगर आप मानते हैं, केवल कृति अर्थ स्वीकार करते हैं धातु का, तो लाघव है, और आपके मत में व्यापार अर्थ मान लेने में गौरव होता है, इसीलिए कृतित्व को ही सकतावच्छेदक मानिए, अधः संताप न तो फुटकारत्व आदि को धातु का सकतावच्छेदक मत मानिए, ऐसा प्रतिपक्षी ने जो कहा उसके लिए ग्रंथकार कहते हैं इति नौ वाच्यम, आप ऐसा मत करिए, ये उचित बात नहीं है। अब कैसे उचित नहीं है, तो आगे उसका विवरण देते हैं, कहा कि रथो गच्छति घटो जानाति इत्यादो, कहा कि अगर हम कृतित्व को सकतावच्छेदक मानेंगे तो जैसे कि पहले बात आई है कि कृतित्व जो है किसमें रहने वाला धर्म है, चेतन में रहने वाला धर्म है, अचेतन में रहने वाला धर्म तो है नहीं, और प्रयोग जो है व्यवहार में चेतन के लिए भी जो है तिंगंत पद का प्रयोग होता है, अचेतन के लिए भी तिंगंत पद का प्रयोग होता है, जैसे रथो गच्छति रथ जाता है, अब रथ क्या है, चेतन है कि अचेतन है, अचेतन है, लेकिन उसको भी गच्छति कहते हैं ना, तो जब रथ अचेतन है तो फिर उसमें गच्छति कैसे कहेंगे, रथ अचेतन है तो वो कैसे चल सकता है, तो यहाँ पर अगर हम गच्छति में गम धातु का अर्थ जो है अगर हम कृति मान लें तो फिर इसमें कृति रहेगी ही नहीं रहेगी, क्योंकि वह रथ अचेतन है और कृति जो है चेतन निष्ठ धर्म है, निष्ठ माने रहने वाला, चेतन में रहने वाला धर्म है, तो ये रथो गच्छति इस तरह का प्रयोग नहीं हो पाएगा। ऐसे ही घटो जानाति घरा जानता है, यहाँ पर घट जो है अचेतन है, उसके लिए जानाति का प्रयोग किया गया, तो जानाति में जो ज्ञा धातु है उसका भी अर्थ जो है कृति होगा, सकतावच्छेदक कृतित्व होगा, और वह जो है ना घट में रह नहीं सकता, अचेतन में रह नहीं सकता, तो इस तरह का प्रयोग नहीं हो पाएगा जो कि प्रयोग किया जाता है व्यवहार में। तो ये जो तर्क दिया था प्रतिपक्षी ने कि लाघव होने के कारण कृति अर्थ मानिए धातु का, गौरव होने के कारण व्यापार अर्थ मत मानिए, उसका जवाब व्याकरणों ने दिया कि अगर हम कृति अर्थ मानेंगे तो अचेतन में जो जानाति गच्छति सब का प्रयोग होता है वह नहीं हो पाएगा। इस पर नैयायिक जो है एक समाधान देते हैं, क्या समाधान देते हैं, कहते हैं कि अर्थ तो आप कृति ही मानिए धातु का, और जहाँ पर अचेतन के लिए प्रयोग होता है धातु का वहाँ पर क्या करिए, शक्ति से अर्थ मत निकालिए, वहाँ पर लक्षणा से अर्थ निकालिए, और लक्षणा से वहाँ पर जो है व्यापारत्वादि प्रकारक बोध करिए, और व्यापारत्वादि प्रकारक बोध करके फिर रथो गच्छति और जानाति इस तरह के प्रयोग व्यवहार में होने संभव होंगे। जो आप इन्होंने व्याकरणों ने दोष दिया था कि व्यवहार में रथो गच्छति जानाति प्रयोग होता है वह प्रयोग नहीं हो पाएगा कृति अर्थ मानने पर, उसके लिए नैयायिकों ने एक समाधान दिया कि ऐसा है कि शक्ति के आधार पर तो सचमुच ये प्रयोग नहीं होगा, लेकिन एक दूसरी भी वृत्ति होती है, वृत्ति तीन प्रकार की होती है, शक्ति लक्षणा व्यंजना, तो जहाँ शक्ति से काम नहीं करता चलता है वहाँ लक्षणा का सहारा लेते हैं, जैसे गंगायाम घोषा में, उसी तरह से यहाँ पर क्या करेंगे, रथो गच्छति में लक्षणा के द्वारा व्यापार अर्थ कर लेंगे, जाना घटो जानाति में लक्षणा के द्वारा व्यापार अर्थ कर लेंगे, फिर तो व्यवहार में प्रयोग होने लगेगा ना। इस तरह से न्यायिकों ने समाधान दिया, वही कहते हैं कि रथो गच्छति जानाति इत्यादो च व्यापारत्वादि प्रकारक बोधो, माने व्यापार है प्रकार जिस बोध में, प्रकार माने विशेषण, व्यापार है विशेषण जिस बोध में, इति लक्षणया नैयायिक रीति साध्वी, लक्षणा के द्वारा जो समाधान देते हैं यह जो नैयायिकों की रीति है, नैयायिकों की मान्यता है, वह साध्वी वह सही है। फिर कहते हैं सक्षत का कि ये जो बात जो है ना ये भी नैयायिकों की रीति जो है आपने कहा साध्वी है माने अच्छी है, ये सही बात नहीं है, क्योंकि नैयायिकों को क्या करना पड़ा, चेतन प्राणी के लिए जब प्रयोग होगा गच्छति जानाति तो वहाँ क्या अर्थ मानना पड़ेगा, कृति, और सकतावच्छेदक होगा कृतित्व, और जहाँ अचेतन के लिए प्रयोग होगा वहाँ पर अर्थ क्या मानना पड़ेगा लक्षणा के द्वारा, व्यापार। और लक्ष्यतावच्छ जैसे शक्ति में सकतावच्छेदक होता है, ऐसे ही लक्षणा में लक्ष्यतावच्छेदक होता है। अब आपको मैं एक उदाहरण पर, लेकिन रिकॉर्डिंग का समय बीत रहा है, यही रखते हैं आज।